त्याग दिया जाएगा। तदैव अयम नष्ट मंगल भविष्य, उसी दिन इसका मंगल नष्ट हो जाएगा। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तब तक मंगल है, जिस दिन मैं इसको छोड़ूंगा उसी दिन अमंगल इसका चालू हो जाएगा, और मेरे अनुपस्थिति में कलिना अति निराकृत, यह कलिजुग के द्वारा भी अभिभूत हो जाएगा, मित्रम आक्रांत हो जाएगा, निराकृत कलिजुग दबा लेगा इस लोक को। और सातवें दिन के बाद ही ऐसा होगा, नहीं समुद्र डुबाएगा सातवें दिन बाद। तो भगवान को सब कुछ पता है और वही ऐसा करना चाहते हैं, कलयुग को भगवान समय देना चाहते हैं। एक बार प्रश्न आया है पद्म पुराण में कि पुंडरीकाक्ष भगवान क्यों सह रहे हैं, क्यों कलयुग को रहने दिए? तो भगवान ने ही युग धर्म बनाया है, इसलिए वे युग धर्म को छोड़ते हैं, रहने देते हैं। भगवान कहते हैं जैन ही मैं पृथ्वी को छोड़ूंगा, श्लोक को छोड़ूंगा, तेही इसका मंगल नष्ट हो जाएगा और कलयुग चढ़ बैठेगा। प्रश्न होगा तब आप मत जाइए, आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन यह भगवान की इच्छा है, सबको समय मिलना चाहिए। युग धर्म भगवान ने बनाया, युग का शोभा बनाया, इसके साथ ही साथ उस युग में जो भगवान के आराधना की विधि है वह भी भगवान ने बताया। इसलिए कलयुग से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कलयुग में जो भगवान के आराधना की विधि है उसे अपनाना चाहिए, और वो है महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो न वस्तव्यम त्वया एवैह मया त्यक्ते महीतले, तो मेरे द्वारा जब महीतल का धरातल का त्याग किया जाएगा तो उस समय तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग जुगे जन अधर्म रुचि भविष्यति, कलयुग में जन समुदाय की रुचि अधर्म में हो जाएगी, पाप करने में ही लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, सहज अधर्म रुचि। भगवान ने कलयुग के आने से पहले बात कर रहे हैं अपने मित्र से कि कलयुग जुगे जन अधर्म रुचि भविष्य, अधर्म में निष्ठा होगी, रुचि हो जाए झूठ बोलने में, चोरी करने में, हत्या करने में, किसी भी प्रकार का पाप करने में रुचि होगी, प्रेरित नहीं करना पड़ेगा, अब कहीं थोड़े लिखना पड़ता है कि कृपया झूठ बोला कीजिए, कहीं लिखना नहीं पड़ता है, सत्यम बदल लिखना पड़ता है, फिर भी आदमी सच नहीं बोलता है कलयुग में, और झूठ बोलने के लिए लिखा नहीं गया है लेकिन फिर भी बोलता है, क्योंकि स्वाभाविक रुचि है झूठ बोलने। और अब समाज में मान्य सत्यवादी लोग भी झूठ बोल रहे हैं, जिनको माना जाता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे आप किसी से कही आप आ रहे हैं ना, तो वो आदमी कहता हाँ हाँ आएंगे, प्रयत्न करेंगे, वो जानता है कि आना नहीं है, उसी समय कहते समय भी जानता है कि उसको आना नहीं, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, हाँ हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे 99%, और उस 99% का मतलब होता है 1%, चाहे उतना भी नहीं, तथा कथित धार्मिक लोग भी झूठ बोलने लगे हैं कलयुग में, और लोगों की तो बात ही दूर है, असत्य वचन बोलना यह कलयुग की का दोष है। भगवान के विषय में शास्त्र से कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान के विषय में लोग बोला करते हैं बिना मतलब, या सत्य वचन, ठीक से नहाना नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, दान नहीं, तप नहीं, कोई कर्म नहीं, अधर्म रुचि। जैसा मैं कहा था सवेरे जगे और बस कर्मी बेड़ी सब पीना खाना बिना नहाए धोए स्वधर्म रुचि अधर्म रुचि जस्य स अधर्म रुचि अधर्म में स्वभाव रुचि जहाँ हो जाती है तो दूसरे को उपदेश या प्रेरणा की अपेक्षा मनुष्य नहीं करता है, अपने आप करता है। और धर्म में प्रेरणा दिए जाने के बाद भी वो नहीं करता है। लिखा जाता है, हम लोग इस काल में लिखा करते हैं, चांद हरे कृष्ण एंड दी है, हरे कृष्ण सदा जपती है, लेकिन बहुत कम लोग जप पाते हैं। आप लोगों को इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाण, भगवान जिस समय बोल रहे हैं उस समय अभी कलयुग आया नहीं था, हम लोग तो वही सब रात दिन देख रहे हैं, इसलिए अब इसकी व्याख्या की क्या आवश्यकता। और धर्म रुचि किस तरह से अंडा रुचि तो अंडे रुचि हो गई, पाप है या धर्म किस तरह धीरे 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 घिरता जा रहा है। अब गांवों में भी सब्जी की तरह अंडा लेकर के घूम रहे हैं और बच्चे जहां तहां लेकर के अंडा खा रहे हैं और बड़े लोग पैसा देते हैं, हाँ खा लो कोई बात, इस तरह का धर्म। इसी तरह से हत्या, व्यभिचार, मांस भक्षण, ये सब पाप बहुत बढ़ रहे हैं। जो रुचि है तो रुचि में कौन रोक लगा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में लोगों की अधर्म में रुचि हो जाएगी, इसलिए जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तो तुमको यहां नहीं रहना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? भगवान यहां से वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु, तुम अपने स्वजनों में और बंधुओं में जो स्नेह है उसको पूरा पूरा त्याग करके और मुझमें मन लगा करके समदृष्टि संपन्न होकर के पृथ्वी पर घूमो, विचरस्व गान विचरो, विशेषण चरस्व विचरस्व, घूमो अब एक जगह मत रहो। स्वजनों का संबंध स्नेह त्याग कर और मुझमें मन को आविष्ट कर, दो काम करके घूमते रहो। एक दिन ऐसा समय था उद्धव जी के लिए कि भगवान के साथ रहते थे और अपने स्वजन सब थे, संबंधी थे, स्वजन थे, स्वजन मतलब अपने मित्र आदि, और बंधु का अर्थ है जिनके साथ दैहिक संबंध होता है तो बंधु कहते हैं। तो बंधु बांधव भरे हुए थे, सुखी थे और विजेता थे सारे विश्व में। उनके प्रति भगवान कह रहे हैं कि उन बंधुओं से स्नेह को तोड़ो और घूमो। यह सब बहुत आसान बात नहीं है कि स्वजनों से संबंध तोड़ करके और भिखारी बन करके घूम। उद्धव जी ने कहा तब तो स्वजन में सबसे बड़े स्वजन आप हैं, तो आपसे भी स्नेह तोड़ने क्या है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैया विश्व मन सम्यक, मुझमें पूरा पूरा मन आविष्ट करके, बाकी और सबसे हटा करके और मुझमें मन को आविष्ट करके घूमो। तो स्पष्ट संकेत हो गया कि मैं साथ में अब नहीं रहूंगा, अब तुमको अपनी ओर से मुझे पकड़ना है, अपना मन मुझमें आविष्ट करो, तुम देख ही रहे हो मुझको, मेरी बातें सुने हो, सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत सुगम बात है, हम मुझमें मन को आविष्ट करना। तो मन में मेरा चिंतन करते हुए, मेरी लीलाओं का मनन करते हुए और घूमो और स्वजनों का स्नेह त्याग परित्यज। मनुष्य जीवन में इस वैराग्य विद्या को सीखना आवश्यक है, हम लोग जैसे ग्रहण करते हैं तो उसी तरह से त्याग भी करना चाहिए, उतना ही आनंद से समय आने पर। स्वजनों का त्याग, घर का त्याग, धन का त्याग और तो क्या, देह का त्याग भी उतने ही प्रेम से करना चाहिए जितना प्रेम से इसको भोजन दे रहे हैं। और प्रतिदिन हम लोगों का अनुभव है, जैसे हम ग्रहण करते हैं तो त्याग करते हैं ना, पानी पीते हैं तो पेशाब भी करते हैं कि नहीं, त्याग हुआ। भोजन करते हैं तो शौच करते हैं, त्याग हुआ। क्या त्याग करने में थोड़ा भी कष्ट होता है? बल्कि त्याग नहीं करने की नौबत आ जाती है तो बहुत कष्ट होता है। आदमी दवा लेकर के भी त्याग करना चाहता है, कहता है कब्ज हो गया, ये हो गया, वो। कोई कहे कि अरे आप इतना प्रेम से पकाए खाए, उसका त्याग क्यों कर रहे? नहीं त्यागेंगे तो मरेंगे। यही बात स्वजनों के साथ भी है। एक दिन जिस तरह से विवाह होता है तो उसी तरह से एक दिन संन्यास होना चाहिए, और उसी आनंद के साथ, रो धो करके नहीं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा कोई नहीं रहता है, न कोई धन रहता है, न कोई भाई रहता है, न स्त्री रहती है, न बेटा रहता है। तो यहां से जाने से पहले भी उसी आनंद के साथ त्याग करके एकदम फ्री होकर जाना चाहिए, नहीं तो फिर जन्म मरण में फंसे रहेंगे ममता रहने पर। तो ग्रहण करने में तो सब लोग तैयार रहते हैं। पालकी में बैठ करके ससुराल जाने के लिए अब दुल्हा लोगों के सामने देखिए, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि थोड़ा भजन करो और छोड़ो, थोड़ा घूमो वृंदावन, तो काट मार देते हैं, लकवा मार देता है, अरे बाप रे बाप, अब ये क्या करना पड़ेगा। तो ग्रहण करते हैं, त्याग नहीं कर सकते। पर इस संसार में प्राकृत वस्तुओं को इस तरह से ग्रहण करना और त्याग करना दोनों आवश्यक है। और तो और संबंधियों की बात छोड़ दीजिए, ये शरीर भी त्यागना पड़ता है। हम भले प्रेम से न त्यागें, लेकिन त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? उड़ जाए हैं सुगना पिंजड़वा के छोड़ के, पिंजड़ा छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये पिंजड़ा को सजा रहे रेशमी कपड़ा से, तेल साबुन और भोजन कार नाना प्रकार की वस्तुओं से पिंजड़ा को सजा रहे हैं, तो कभी इसके लिए सोचना चाहिए ना कि अब इसको छोड़ना है। जब छोड़ना है तो पहले से ही अनासक्त हो जाए, पहले से छोड़ने की तैयारी कर ले तो छोड़ने में दुख नहीं होगा। और जब देह छोड़ना है तब फिर स्त्री बच्चा भाई आदि छोड़ने में क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इस जगत में लोग इतनी माया में पड़े हुए हैं, वो इतनी गहराई से, वो जानते ही नहीं कि छोड़ना है। अगर किसी को ये चेतना दी जाए कि शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कहता है तो सब लोग छोड़ेंगे तो हमारा भी छूट जाएगा, इसके विषय में अभी से क्या सोचना है? अभी से क्या सोचना है? मनुष्य को उतना विकल होना चाहिए सब छोड़ने के लिए जितना शौच होने के लिए अभी विकल रहता है। शौच की हाजत हो जाए और उसको कोई कहे कि नहीं अभी दो चार घंटा रुकिए, तो कहेगा अरे मर जाऊंगा, जल्दी करो, ये करो, कर इस तरह से त्याग के लिए उत्सुक रहना चाहिए, और नहीं तो वास्तव में मरना पड़ेगा। राजर्षि भरत ने इस तरह छोड़ा था राज्य धन स्त्री आदि सब कुछ। उद्धव जी को उपलक्ष्य बनाकर भगवान समग्र मानवों को ये उपदेश कर रहे हैं, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। यहाँ स्वजन और बंधुओं में स्नेह हो जाता है स्वाभाविक। घर द्वार आदमी को उतना नहीं बांधता है जितने अपने आदमी बांधते हैं। घर द्वार क्या करेगा, निकले चल दिए, लेकिन निकलते समय ही कोई न कोई स्वजन, चाहे अपना बच्चा चाहे पत्नी आदि आकर के रोड़ा अटकाते हैं, कहां जा रहे हैं? गुरु कोई कह दे कि वृंदावन जा रहे तो वृंदावन खाने को दे रहा है। अब देखिए रुको यही मरो यही रहो मत जाओ कहीं। और तो और 7 दिन के लिए भागवत में भी स्वजन नहीं आने देते हैं। दूसरे लोग कहते हैं चल रहा है ना तो कहते हैं हाँ, लेकिन स्वजन को पता लग जाए कि जाना है पागल हो गए हो, तो हमेशा लगा ही रहता है भागवत सप्ताह। इतना पागल मत बनो और जाना है तो ये सब गाय बच्चा भैंस लेकर के जाओ, वही करते रहना सब ये करना है। त्याग का कोई नामो निशान नहीं है, त्याग सिखाई त्याग सिखाया नहीं जा रहा है लोगों को, केवल ग्रहण 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 ग्रहण। तो सीखना चाहिए, भगवान यहां सिखा रहे कि तुम स्वजन बंधुओं का स्नेह त्यागो और मुझमें मन को पूरा पूरा लगा करके सम दृष्टि हो करके विचरण करो। मई सम्यक आवेश्य, मई मन सम्यक आवेश्य समदृक् विषमम नाना रूपम अवबाध्य सम्यक समम माम पश्यति समदृक् तथा चैव मम तो विच्छेदा भावेति भाव। समदृक् सम भगवान का ही नाम है, मुझमें मुझको ही सदा देखते रहोगे तो हमारे और तुम्हारे में कोई विच्छेद नहीं होगा। यह सुख दुख मान अपमान भूख प्यास सर्दी गर्मी में सम होकर के घूम, कहीं कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गान विचरस्व अत्र अंतरे मनसी भगवान किंचित परामर्श, भगवान मन में सोचे उद्धव जी को उपदेश देते समय इस श्लोक का भाव चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। रुक्मिणी आदि विवाह बाणाद्य असुर वध प्रसंगतः तत्र तत्र बंधु मिलन प्रसंगतः च इंद्र प्रस्थ मिथिलादिशु च जाता जातर मांग दृक्षुणां भूतलस्थ भक्ताना मनोरथो मया प्राय संपादित एव। भगवान विचार कर रहे हैं कि रुक्मिणी आदि के विवाह के प्रसंग से और बाणासुर आदि के वध प्रसंग से तथा अपने बंधुओं से मिलन आदि के प्रसंग से मैं कभी कभी इंद्रप्रस्थ गया मिथिला आदि में गया, तो इस तरह मेरा आना जाना लगा रहा, अतः भूतलस्थ जितने भी भक्त हैं उनका मनोरथ प्राय मैंने पूरा कर दिया, इस पृथ्वी पर जो मेरे भक्त हैं उनका मनोरथ मैं पूरा किया। अच्छा पृथ्व्या अधस्थितानां पृथ्वी के नीचे रहने वाले बलि महाराज या जमराज आदि का मनोरथ भी मैं पूरा किया। कैसे? सदगर्भ है आनयन गुरुपुत्रा नयन प्रसंगे, 6 गर्भों को लाने में और गुरुपुत्र को लाने में मैं नीचे गया, तो नीचे के सुतल लोक आदि के भक्तों का मनोरथ मैंने पूरा किया। ऊर्ध्वस्था नाम अदिति कश्यपादि नाम अति पारिजात क्यादा हरण प्रसंगे न, और स्वर्ग लोक में भी अदिति और कश्यप आदि का मनोरथ पूरा हुआ पारिजात हरण के प्रसंग में। महावैकुंठ स्थान आदि पुरुष भूमादि नामति और महावैकुंठ में रहने वाले आदि पुरुष भूम पुरुष आदि का भी मनोरथ में पूरा किया। विप्र बालक नयन प्रसंगे द्वारका में ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है तो उसको लाने के प्रसंग में वंचितम मत दर्शनम निष्पादितम एवं भूम पुरुष मेरा दर्शन करना चाहते थे वह भी निष्पादित। सब जगह मैं गया सबका मनोरथ पूरा किया, किंतु बद्रिकाश्रम वासी नाम नर नारायणादि परमहंस महा मुनिंद्रा नाम एवं मत दर्शनोत्सुक्यम न सफलीभूतम बंधु, परंतु बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण में रहने वाले नर नारायण आदि परमहंस महामुनिंद्रों का मेरे दर्शन के विषय में जो औत्सुक्य था वो सफल नहीं हुआ। और संप्रतितु और इस समय सपाद सत वर्ष पर्यंता मत प्राकट्य मर्यादा च वृत्ता, और इस समय 125 वर्ष हो गया इस जगत में मेरे प्राकट्य का, अतः तत्र प्रस्थापितु अयम उद्धव एव निरूपितव्य। अतः बद्रिकाश्रम में भेजने लायक यह उद्धव ही है। अयम ही मत तुल्यत्वात् मत प्रतिमूर्ति एव, यह मेरे तुल्य है, अतः मेरी मेरा प्रतिनिधि है, मेरा ही स्वरूप है। तेभ्य उपायनत्वे न देयम्। उन ऋषियों को, नर नारायण ऋषियों को और अन्य ऋषियों को भी उपायन के रूप में यह उद्धव देने योग्य है। मदीय भग शब्द वाच्य और ज्ञान वैराग्य एकम एकम कण मत भक्ति जोगम चंद्रध्यम रत्न निवादाय जास्य। मेरे भग शब्द वाच्य में ज्ञान वैराग्य भी है। तो ज्ञान वैराग्य इन दोनों को और मेरी भक्ति योग को देने के लिए रक्त, इन दोनों अगर मंजूषा है तो मेरा भक्ति योग है, रत्न है, उस रत्न को देने, रत्न के साथ यह जब जाएगा बद्रिकाश्रम तो उनका मनोभीष्ट निश्चित ही पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भगवान के मन में प्रश्न होता है कि यदि अपि अस्य मत प्रेम परिपूर्णस्य तदुत्थे ज्ञान वैराग्य वर्तेता एव, उद्धव का मेरे प्रति परम प्रेम है, अतः प्रेम के कारण संसार से वैराग्य और मेरे तत्व का ज्ञान तो इसे है ही है, फिर भी संप्रति मयोपदेष्टव्ययो पृथक ज्ञान वैराग्यो नास्ति एव अस्य जिघृक्षा। यह ज्ञान वैराग्य से पूर्ण है, अतः मेरे द्वारा ज्ञान वैराग्य की बात सुनने की इसको कोई लालसा नहीं है। तदपि मदिच्छायाम सत्यम तत्र अस्य जिघृक्षा खलु अधुनैव उत्पत्स्यते। लेकिन मेरे संकल्प से इसमें ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने की वासना जगेगी। अच्छा, इसी प्रकार से तथैव यद्यपि अस्य मद विच्युतौ सदैव प्राणहानि, मेरे वियोग में तत्काल ही इसका मरण हो सकता है, परंतु मेरी इच्छा शक्ति से मेरे विरह में भी यह जीवित रहेगा और मेरी योग माया इसके प्राणों का पालन करेगी। तो अतः मैं उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजू। यही सोचकर भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वजन बंधुओं से जादवों से स्नेह हटा दो। वास्तव में उद्धव जी में दो प्रकार का स्नेह था अपने बंधुओं के प्रति। एक तो मत परिचया प्रथमतः स्वदेह संबंध संबंधे न, एक संबंध तो भगवान के परिचय के पहले से था देह के संबंध के कारण, और दूसरा स्नेह हुआ कृष्ण के कारण, मेरे कारण। तो भगवान जो पहला संबंध है उसी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण के कारण जो स्नेह उत्पन्न हुआ था स्वजनों में, उसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। केवल देह के संबंध से जो उत्पन्न हुआ था उसको छोड़ने में कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाजी भगवान जदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि न स्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। भगवान ने कहा कि सम दृष्टि रख करके सब जगह घूमो, किसी वस्तु में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि यह लेने लायक है या त्यागने लायक है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा देश है यही रह जाना चाहिए, ये गलत देश है यहां से भागना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। सम दृष्टि होकर के विचरो, सुख दुख मान अपमान। उद्धव जी कहते हैं कि ननु गुण दोषाभ्याम विषमे लोके कुतः सम दृष्टि स्याम। संसार में तो गुण दोष भरा पड़ा है, अच्छाई बुराई भरी पड़ी है, अनुकूल प्रतिकूल वातावरण मिलता रहेगा, तो इसमें मैं सम कैसे हो सकता हूं। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, जत इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि गृह्यमान। देखो, इस संसार में जो कुछ भी मन से सोचा जाता है, जिन जिन वस्तुओं के विषय में सोच रहे, जो कुछ सोचता है व्यक्ति, या वाणी से जिनका वर्णन करता है, दोनों आंखों से जिसको जिनको देखता है, या कान आदि से सुनता है, आदि में स्पर्श करता है या सुनता है, इन आदि के द्वारा गृह्य मान जो ग्रहण करता है, मन गो गोचर चाह लगी मन जाए सो सब माया जानो। भाई भगवान यही कह रहे हैं, मन द्वारा, वाणी द्वारा, आंखों द्वारा और श्रवणादि द्वारा जो भी जो कुछ पकड़ा जाता है गृह्यमान, तत् माया मनोमयम विद्धि और भी नश्वरम विद्धि। मनोमयत्वात् माया इति विद्धि, वो मनोमय है इसलिए वो माया है नहीं वास्तव में, और भास भी रहा है फिर भी वो नश्वरम विद्धि, वो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। जो भास रहा है वो भी भासना भी सदा नहीं रहेगा। तो मन से जो कुछ सोचा जा रहा है, वाणी से जो बोला जा रहा है, आंखों से देखा जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, क्या ये सारी वस्तुएं व्यर्थ हैं? है नहीं, है वास्तव में, लेकिन प्राकृत नेत्रों से, प्राकृत वाणी से जिस रूप में हम वर्णन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही नहीं है। इनमें प्रायः इन इंद्रियों के साथ मन का जोग रहता है और मनोमय होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, लेकिन किसी व्यक्ति ने यह मान लिया विवाह करके कि यह मेरी पत्नी है, तो उसमें पत्नी तो नहीं है, वो व्यक्ति है, लेकिन ये मानी हुई बात है कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, ये है, वो ईंट पत्थर है, लकड़ी भी है, बांस है, सब ठीक है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि यह मेरा घर है और ये है, वो है नहीं, और देखना सुनना भी नश्वर, मन में बैठी हुई है बात की अनुकूल है प्रतिकूल है, ये मेरा है पराया है, ये है वो है। आज कोई खेत देख रहा है, आप कह रहे फलाने का खेत है, दूसरा ले लिया उसी दिन दृष्टि बदल गई, तो आप तो पहले भी देख रही थी, पहले भी कान सुन रहा, अब इसके बाद भी सुनेगा, तो नश्वर हो गया ना, बदल गया। इन वस्तुओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वह बदलता रहता है, इसलिए उसको नहीं ही मानना है, उसको माया मय कहते हैं। जिस रूप में हम उसको देख रहे हैं और उस रूप में वह नहीं है, तो इसको माया कहते हैं। माया शब्द का अर्थ प्रचलित है लोग, भले वह वस्तु है लेकिन हम देख रहे हैं जिस रूप में, उस रूप में नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम, संसारिक वस्तु में रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं कहेंगे, सर्प में रस्सी का भ्रम हो रहा है, खतरनाक बात। सर्प पड़ा हुआ है, हम उसको रस्सी समझ कर उठा रहे हैं, वो तो डसेगा और मरण निश्चित होगा, हम किसी सर्प को जैसे रस्सी समझ लें, परंतु वास्तव में वह रस्सी नहीं है, रज्जु नहीं है, भयानक सर्प है। इसी तरह से संसार में जो हम ये समझ लेते हैं कि यह वस्तु मेरी है, ये है वह है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा मेरा करते रहते हैं, यह मायामय है, मनोमय और नश्वर, वो भी बहुत दिन मेरा मेरा नहीं कह पाएंगे। घर अभी बेच देंगे दूसरों को तो कहेंगे वो उसका है, अपने ही घर। मैं देखा है कि किसी के घर में अपना बैल है, खिला रहा है पिला रहा है, और बैल गांव में बेच दिया, और वो बैल आकर के अगर इसके नाद में हरी में खाने लगा तो कहते फलाना के बैल मार, जिसको बेच दिया है उसका कहते हैं उसका बैल आया है मारो उसको हटा। और कुछ दिन पहले वो बैल अपने घर में था, उसको अपना बैल कहते, और एक ही दिन बेचे हुआ और आकर के हरी में खा ले तो कहते उसके बैल को मार भगा। इस तरह से इसको नश्वर कहते। और दूसरी बात है कि स्वरूप से भी नश्वर है, एक दिन वस्तुएं नष्ट हो जाती है। मन में तो भाव का परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन स्वरूप से भी वस्तुएं विकृत होती रहती है। शरीर ढह जाता है, नष्ट हो जाता है, घर ढह जाता है, संसार नष्ट होता है। इसलिए उद्धव इन सब वस्तुओं को माया मनोमयम और नश्वर समझो, और इस तरह घूमो, कहीं राग न करके, कहीं द्वेष न करके, विद्धि विद्या समझो। आंख से जो कुछ दिखाई दे रहा है, वाणी से जितना वर्णन किया जा रहा है और श्रवणादि से सुना जा रहा है, गृहमान जो भी पकड़ा जाता है सब मायामय है। क्योंकि अप्राकृत वस्तु तो मन से सोची नहीं जा सकती, वाणी से वर्णित नहीं हो सकती और आंखों से दृष्ट नहीं हो सकती। मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी गृहमान। इसी पर कुछ तार्किक लोग तर्क किया करते हैं, तब तो मंदिर में भगवान का जो श्री विग्रह देख रहे हैं तब तो वो भी माया में है। नहीं, वो माया में नहीं, वो माया में नहीं। वह क्या है कि वह परम सत्य भगवान का एक रूप प्रकट किया गया है, वास्तव में उसकी सत्ता है, वह परम सत्य का स्मरण करा रहा है, इसलिए वो सत्य। और जिस वस्तु को देख करके सुन करके और उसका वर्णन करके असत्य में अभिनिवेश हो वो मायामय है। नहीं वास्तव में वह वस्तु हमारे हमारी या और भी, लेकिन हमारी ममता और बढ़ती जाती है तो अज्ञान बढ़ता है। और भगवान का विग्रह जब हम देखते हैं तो वास्तव में भगवान में अभिनिवेश बढ़ता है। भगवान है परम सत्य, अपने हैं, इसलिए भगवान का विग्रह, भागवत, भगवान का नाम या वैष्णव, ये सब सत्य है, ये मायामय नहीं। केवल क्रिया सामने से ही नहीं समझ लेना चाहिए कि सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मनोमय। जब देखना सुनना बोलना सब मायामय है, इसलिए नया से देखेंगे न सुनेंगे न बोलेंगे, बस चुपचाप रहेंगे। नहीं, चुपचाप रहने पर भी तो मन तो सोच नहीं लगेगा, मन तो मानेगा नहीं। प्राकृत वस्तुओं के लिए बात भगवान कह रहे हैं, उसको माया मैं समझ। मनोमयत्व हेतु ननु गाम पर्यटतो मम विहित कर्म लोपास्यात्म सही। और मान लीजिए उद्धव जी कहे कि जब हम घूमते रहेंगे पृथ्वी पर तो जो शास्त्र में विहित कर्म है वो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमारे कर्तव्य कर्म का भी लोप हो जाएगा। मनुष्यों के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्र में, उसे तो करना चाहिए। और आप कहते हैं कि घूमो, तो रोज घूमता ही रहूंगा, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं, तो विहित कर्म का लोप होगा। भगवान इसका उत्तर देते हैं कि पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रम सगुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष दियो भिदा। भिदा माने भेद। अयुक्तस्य पुंसः भ्रम एव तावत् नानार्थः भवति, या नानार्थ एव भ्रम भवति। जो व्यक्ति अयुक्त है, विक्षिप्त मन सह, अयुक्तस्य विक्षिप्त मनसः अथवा अज्ञानी अविवेकी है, असमाहित चित्त है, उसी पुरुष, उस पुरुष का जो भ्रम है वह भ्रम ही नानार्थ बनकर उसके सामने उपस्थित होता है। अज्ञान ही उसके सामने अनेक वस्तु, इसको नानार्थ कहे, नाना अर्थ, अर्थ माने वस्तु। लेकिन सोए हुए मनुष्य का जो भ्रम है, अज्ञान है, वही नानार्थ में प्रकाशित हो रहा है। आप सपना सब देखते हैं ना, तो सपने में मान लीजिए आप देख रहे हैं कि सांप मुझे खदेड़ रहा है, मैं भाग रहा हूं, तो भागने वाला भी वहां नहीं है, सांप भी नहीं है, भागने क्रिया भी नहीं है, और भी जो वस्तु देखेंगे इधर उधर, रोड या खेत कुछ भी या और लोग, वह कुछ भी नहीं, भ्रम ही उन वस्तुओं के रूप में दिखाई दे रहा है, अज्ञान दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति असमाहित है, अयुक्त है, उसका अज्ञान ही यहां बहुत बहुत वस्तुओं के रूप में दिखाई दे रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा ही है, वो है, वो है, ऐसा। और सब गुण दोष भाग, और वह भ्रम ही गुण दोष का भागी है, मतलब यह वस्तु उत्कृष्ट है, यह वस्तु निकृष्ट है, इस प्रकार गुण दोष बुद्धि का हेतु वह भ्रम ही है। मनुष्य का अज्ञान ही ऐसा मानता है कि ये व्यक्ति मेरे अनुकूल है या हमारा शत्रु है, इसको गुण दोष कहें, यह ठीक है या अठीक है या ठीक नहीं है, इस प्रकार का जो विचार होता है यह भ्रम ही उपस्थित करता है। अज्ञान ही गुण दोष का धार। इस पर प्रश्न किया जा सकता है, ननु वेदे नैव विधि निषेधा धर्म हिदस्य सत्तोक्ता। उधर प्रश्न कर सकते हैं कि वेद तो आपके वचन है और वेद में भी तो ये बताया गया है कि यह विधि है, यह निषेध है, यह काम किसी, यह कर्म किसी के लिए गुण है, यह दोष है। कर्म अकर्म विकर्म का विचार तो आपने भी किया है वेदों में, तो मनुष्य का भ्रम ही कैसे सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं गुण दोष धिया पुंस कर्मा कर्म विकर्म भिदा। गुण दोष धिया भ्रम विजृंभित गुण दोष बुद्धि। भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण जिस मनुष्य में गुण दोष बुद्धि बनी हुई है, यह अच्छा है या बुरा है, अपना है पराया है, ये है वो है, उसी के लिए, उसी पुरुष के लिए वेद कर्म अकर्म और विकर्म का भेद किया है। लेकिन जो गुण दोष बुद्धि से ऊपर है उस पुरुष के लिए कर्म अकर्म विकर्म का भेद शास्त्र नहीं करता है। उसके लिए तो जो कर्म है उसे भी छोड़ने को कहा गया है, विकर्म तो छोड़ ही देता है। जैसा भगवान कहते हैं जदा ते मोह कलिलम कलिलम बुद्धि तविष्यति तदा गंता निर्वेदम श्रोतव्यस्य सूत्रस्य। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी भ्रम रूपी जंगल को पार कर जाएगी तो उस समय सुनने लायक और सुने हुए वेदों के वाक्यों से भी तुम्हारा कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, पार हो जाओ। कर्म विकर्म और अकर्म, कर्म मतलब विहित जो शास्त्रों में कहा गया है करने के लिए, और अकर्म का अर्थ होता है उसका लोप, उसके फल को नष्ट करने वाला, और विकर्म का अर्थ वेद में निषिद्ध कर। तो यह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो गुण दोष भी है, जिसके मन में गुण दोष बसा हुआ है और जो गुण दोष बुद्धि से परे हैं उसके लिए कर्म विकर्म आदि का भेद नहीं। गुण प्रवाह ये तस्मिन को सातो का अनुग्रह। चित्रकेतु महाराज ने माता पार्वती से कहा था कि गुण प्रवाह में पतित प्रकृति के गुणों में गिरे हुए जीव के लिए क्या साप और क्या वरदान। यहाँ मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा धन भी मिल गया तो क्या आत्मा को लाभ हुआ है, और वह यदि गरीब भी है तो उसका क्या बिगड़ गया, आत्मा का क्या बिगड़ा। किसी को बहुत बड़ा मान मिल गया या अपमान हो गया तो उससे आत्मा का क्या क्षति होने वाली है, ये तो गुण प्रवाह है। प्राकृत वस्तुएं हैं सब, आत्मा प्राकृत वस्तुओं से भिन्न है, तो फिर भी वेद शास्त्र व्यवस्था दिया है ये करो तुम्हारे लिए ये योग है, यह वर्ण यह आश्रम, ये कर्म तुम्हारे लिए विपरीत है, ये कर्म ठीक है, ये करो ये करो, उसके लिए है जो अभी बिल्कुल गुण के धरातल पर है, अयुक्त है या गुण दोष बुद्धि से अविष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए से व्यवस्था की गई है। तो भगवान ने बारम्बार इस बात को कहे हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवाचु। वेद शास्त्र में जो कर्मा कर्म विकर्म की व्याख्या है ये सब गुण प्रकृति के गुणों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए है। तुम निस्त्रैगुण भवाचु, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, और जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे तो तुम शास्त्र की मर्यादा से भी ऊपर उठ जाओ। इस तरह भगवान वैराग्य का फाउंडेशन डाल रहे हैं नींव। अयुक्त व्यक्ति को ही भ्रम होता है और भ्रम ही इन वस्तुओं के रूप में भासता है, अतः तस्माद्युक्तेन्द्रिय अग्रामो युक्त चित्त इदं जगत आत्मनिच्छस्व विततम आत्मानं मय्यधीश्वरे। इसलिए तुम युक्त इंद्रिय ग्राम अपने समस्त इंद्रियों को निरुद्ध करो, अपने वश में करो और युक्त चित्त हो जाओ, मन को मुझ में आविष्ट करो, समस्त इंद्रियों को मुझ में लगाओ और मन को मुझ में लगाओ। ये अर्थ है युक्त का, अर्थ है कृष्ण से युक्त करना, युक्त इंद्रिय ग्राम और युक्त चित्त, ऐसा हो करके। और इदम जगत, इदम सुख दुख मयम, अचित परिणात्मकम देव मनुष्य आदि शरीर जात इदम जगत। जगत का अर्थ है सुख दुखमय स्थितियां या अचित परिणात्मकम जो मैटर डिफ्यूज हुआ है परिणत हुआ है इस रूप में प्रकृति का परिणाम समझकर मतलब मैटेरियल जगत समझ करके आत्मनि इच्छत्व इसे आत्मा में जीव में देखो। जीव में देखने का मतलब है कि जीवे न धार्जन इति पश्य जीव इसको धारण किया है जीव के कारण यह जगत बना हुआ है। बहुत सी वस्तुएं जो गढ़ी गई हैं बनाई गई हैं वो जीव इसको धारण कर रहा है जैसे शरीर को जीव धारण किया है इसको आत्मा में इस जगत को देखो। जीव के लिए इस जगत की सृष्टि हुई है जीव के द्वारा ये धार्ज है और जीव कहा है तो आत्मानम मई अधीश्वरे विततम व्याप्तम इच्छत्व। और यह देखो कि जितने जीव हैं सब मुझ ईश्वर में मतलब भगवान में भगवान अपने लिए मई बोल रहे मेरे भीतर सब है ये भगवान के द्वारा सब धार्ज इस प्रकार का एक ज्ञान है। जीवों का वास्तविक संबंध भगवान से है और इस जगत का जो हाल चल रहा है इसका जो व्यवहार चल रहा है वो जीवों के लिए है। भगवान को इसे कोई लेना देना नहीं। जीव इसको खाते हैं पीते हैं चाहे सब्जी बनाकर के खाएं चाहे कपड़ा बनाकर पहने चाहे देह बनाकर धारण करें जीवों के लिए जगत और जीव भगवान के आश्रित। आत्मानं मयि अधीश्वरे विततम व्याप्तम धार्जम इति इच्छस्व पश्य सदा एवं इच्छमानस्य धम तन्मूला संस्कृतिश्च निवर्तते इति भाव। जब इस ज्ञान में तुम रहोगे तो भ्रम नहीं रहेगा और भ्रम के कारण उत्पन्न संस्कृति का तो कोई प्रश्न नहीं है। मतलब आत्मनि आत्मा में इस जगत को देखो मतलब जीव का यह भोग्य है ये अर्थ है और आत्मा को भगवान में देखो मतलब भगवान का दास है जीव भगवान नियंता है। मैं नियंता हूँ सबका परमेश्वर हूँ परम प्रिय हूँ जीव मेरा अंश है यह सब देखो ये बहुत बड़ी दृष्टि दे रहे हैं भगवान। हम लोग भी कहीं भी घूमते हैं तो किसी न किसी वस्तु के विषय में सोचते हैं ये किसका है क्या है क्यों बनाया संसार क्यों बनाया गया है दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई है तुमने का है तो दुनिया बनाई है। गीत में भी लोग पूछते हैं पता नहीं भगवान के पास सेवा के गया कि नहीं तो भेजे होते उत्तर क्यों बनाए पूछने वाला बिना प्रश्न का उत्तर लिए चला कहा तेरे मन में समाई है भगवान के मन में क्या समा गए क्यों दुनिया बनाए तो वो जीव के लिए बनाए डिजाइन रंग स्वाद सब। अब दीमक लकड़ी खा रहे हैं भगवान ने दीमक के लिए देवता के लिए लकड़ी बनाए आदमी कुछ खा रहे है सब्जी भात रोटी अंडा ठंडा जो कुछ खाना है खा रहे हैं पहन रहे हैं घर बना रहे हैं चल रहे हैं वाहन बनाए हैं लोहा लकड़ी पेट्रोल सब जुटा दिए भगवान भगवान का इससे कोई मसरफ सबसे अलग नहीं है उनका धाम अलग है वहाँ अद्भुत वस्तुएं सब चिन्मय है बिल्कुल थर्ड क्लास की प्राकृत वस्तुएं जीवों के लिए दी है। ऐसे थर्ड क्लास है भी इस तरह से कि फर्स्ट क्लास स्वरूप शक्ति सेकंड क्लास जीव शक्ति और थर्ड क्लास माया शक्ति। माया शक्ति परिणत हुई है और इसी को जीव भोग रहा है लेकिन जीव को चाहिए कि वो भगवान के रूप रस रंग आदि का अनुभव करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मान मई अधीश्वर है मुझ परमेश्वर में जीव वितप है व्याप्त है भाज्य है ऐसा देखो। ऐसा देखने से भ्रम दूर हो जाएगा और भ्रम के कारण जो संस्कृति होती है वो नष्ट हो जाएगी। भगवान एक प्रकार की जिघृक्षा पैदा कर रहे हैं जानने की इच्छा ऐसी बातें कहते हैं संक्षेप में और चुप हो जाते हैं। अब इस पर उद्धव जी को बहुत भारी लालसा पैदा हो गई जानने की। भगवान यही करना चाहते थे, देना चाहते थे ज्ञान। उद्धव जी ने जब भगवान से प्रश्न किया है आगे कि हमको पूरा विस्तार से ज्ञान दीजिए, भगवान कहते हैं मैं संक्षेप में बोल दिया, आप किसी और ऋषि से ज्ञानी मुनि से आप पूछ लीजिएगा। तो उद्धव जी कहते नहीं नहीं नहीं, आपके समान कोई है नहीं, आपके समान कोई वक्ता देवताओं में भी नहीं है, मनुष्य में तो दूर की बात है, इसलिए आप ही मुझे उपदेश दीजिए। भगवान पुनः कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीर ज्ञान आत्मा अनुभव तुष्टात्मा नान्तराय विहन्य ननु एवं युक्त चित्तत्व न कर्म करणे देवादेव विघ्नान करिष्यन्ति तत्र। शास्त्र में एक बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति वेदों में वर्णित कर्मों को ठीक से नहीं करता है तो देवता उसके जीवन में बहुत विघ्न डालते हैं। कि कोई खूब बढ़िया से कर्म करता है उसको भी विघ्न डालते हैं, और एकदम नहीं करता है उसको भी विघ्न डालते हैं। तो विघ्न डालेंगे तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान का अर्थ है वेद के तात्पर्य का निश्चय और विज्ञान का अर्थ है वेद के अर्थ का अनुभव। वेद का तात्पर्य जानना और उस तात्पर्य का अनुभव करना, दोनों में भेद है। एक को ज्ञान कहते हैं एक को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान संयुक्त हो जाओ और आत्मा अनुभव पुष्टात्मा, आत्म अनुभवे नैव पुष्टात्मा, आत्मा मने भगवान की आत्मा स्वरूप, अपने अनुभव से ही संतुष्ट चित्त हो जाओ। मेरा अनुभव करो, सोचो मन में उससे सुख मिलेगा। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो शरीर इनाम देवादि नाम आत्मभूत और हाँ, और जो शरीर भारी है उनके उनका आत्मभूत हो जाओ, प्रीति पात्री भूत उनमें और अपने में भेद न समझो। तो इस तरह से अंतराय ही न बिहन्य से, फिर विघ्नों से अभिभूत नहीं होगा, वो लोग विघ्न करेंगे ही नहीं। वास्तव में देवता विघ्न उसको करते हैं जो यज्ञ आदि करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो देवताओं के साथ आत्मभूत हो गया, किसी भी शरीरधारी के साथ आत्मभूत हो गया, तो उसके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है, अतः वह संसारिक वस्तु या पद पोजीशन के लिए कर्म करता ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप के आनंद में भक्ति के आनंद से तृप्त रहता है। तो ऐसे भक्त से देवता भी प्रीति करते हैं, जानते हैं कि हमारे लोक में आना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, इसलिए देवता द्वेष नहीं करते हैं, अतः कोई अंतराय कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते। दोष बुद्धियों भयाति तो निषेधा न निवर्तते गुण बुद्धिया च विहितम न करोति तथा उभयातीत, यह अच्छा है यह बुरा है, इस प्रकार की बुद्धि से जो अतीत है और प्राचीन संस्कार बस निषेधा निवर्तते वह प्राचीन संस्कार रहता है, उस योगी का आता हुआ प्राचीन संस्कार बस बुरे कर्मों से बच ही जाता है, लेकिन जान बुझ करके नहीं बचता है, संस्कार बस बच जाता है। न दोष बुद्धि है, दोष बुद्धि करके नहीं, स्वाभाविक ही बच जाता है। और कोई वैदिक कर्म भी करता है तो संस्कार बस करता है, नहीं कि गुण बुद्धि करके कि ऐसा करूंगा तो मेरा विकास होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे मुझे सुख मिलेगा, यह सोच करके नहीं करता है, जथा और भका जैसे बच्चा। बच्चे कभी कभी देखे जाते हैं कि वे बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म के फल आदि का अभिसंधान में नहीं होता है, और कभी कभी बच्चे कुछ गलत काम भी कर देते हैं तो वे जानबूझ करके नहीं करते हैं, संकल्प शून्य स्थिति होती है। किसी भी कर्म में इंटेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल के प्रवृत्ति मार्ग में भी केस आदि में इंटेंशन बहुत देखा जाता है, क्या इंटेंशन था, इंटेंशन मतलब संकल्प प्रवृत्ति क्या थी मन में। नहीं तो एक डॉक्टर दवा देता है किसी को, ऑपरेशन करता है, पेट फाड़ देता है, डॉक्टर का इंटेंशन क्या है कि वो रोगी को ठीक करना चाहता है। और कोई चोर बदमाश किसी के पेट में छुरा मारता है तो उसका इंटेंशन रहता है मार देना, एक दंड का पात्र बनता है और एक पैसा लेता है पेट फाड़ने के कारण, उसको लोग देते हैं डॉक्टर को क्योंकि वह रोगी को ठीक करना चाहता है। तो जो गुणों से परे व्यक्ति है वह इस संसार में बुरे कर्मों से बचता है, लेकिन बहुत जान बुझ करके नहीं, स्वाभाविक ही। और अच्छा वो कर्म करता है तो कोई फल पाने के लिए नहीं करता है, स्वाभाविक ही अभ्यास रमते पूर्वाभ्यास न ते नहीं वह हृदय ही बसो अभ्यास बस प्राक्तन संस्कार रहता है, इस तरह से बच जाना चाहिए। तो एक बच्चे की तरह रहना चाहिए इस संसार में, जथा अर्ध का निश्चिंत, निश्चिंतता और संकल्प शून्यता, घूमो कुछ सोच करके नहीं कि यहाँ मेला लगा है वहां जाऊंगा ये करूंगा, वहां भोज मिल रहा है खाऊंगा, पहुंच गया खाने को मिला खा, ये कहीं कुछ सर्दी गर्मी लगी, जान बुझ करके सर्दी गर्मी नहीं सहना है, लेकिन अगर मिल जाए सहने का अवसर तो सह लेता है, मन अपन सह लेता है। अच्छा कहीं पूजा मिल गई, कोई माला पहना दिया, स्तुति कर दिया तो उसको भी सुन लिया, लेकिन गुण बुद्धि करके नहीं। जैसा बच्चा, बच्चे गुरु है 24 गुरुओं में, आगे प्रसंग आएगा, निश्चिंत रहना, सुखी रहना, खेलते रहते, लोग डांटते रहते हैं फिर भी खेलते रहते। यहाँ शाम को लड़के खेलते रहते हैं, दूसरे लोग उद्विग्न होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, जो रहे हैं। इस तरह बिल्कुल बच्चा की तरह रहना चाहिए। सर्वभूत सुहृद शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन मदात्मकम विश्व न विपद्यत पुनः एवं भूत से न पुनः संसार। इस तरह से जो रहना सीख जाता है फिर जन्म मरण उसका नहीं होता। सर्वभूत सुहृद समस्त जीवों का हित चाहे, शांत और भोग आदि की वासना न हो, काम क्रोध न हो, ज्ञान विज्ञान निश्चय, ज्ञान विज्ञान मतलब परोक्ष और अनुभव द्वारा आत्मविषयक निश्चय जिसका है, संदेह नहीं रह गया है मेरे विषय में। तो विश्व मदात्मकम पश्यन, विश्व को मदात्मकम कृष्ण में देखे, मैं ही इस विश्व का जन्मदाता हूं, मैं पालन कर रहा हूं, मैं सब जगह हूं, यह देखना चालू करे। तो इस प्रकार से देखता हुआ विचरने वाला पुनः न विपत्ति, तो फिर विपत्ति में नहीं पड़ता, जन्म मरण में नहीं पड़ता। इस स्थिति में तुम रह करके निर्बंध होकर के घूमो। तो उद्धव जी अब विशेष जिज्ञासा करेंगे भगवान से। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान विज्ञान संयुक्तः आत्मभूतः शरीरिणां आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायै विहन्यसे। दोषबुद्ध्योभयातीतो निषेधान्न निवर्तते, गुणबुद्ध्या च विहितम् न करोति चार्भकः। सर्वभूत सुहृच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन्मदात्मकं विश्वां न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवतः महाभागवतो नृप उद्धवः प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युता। उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन् योगसंभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यासलक्षणः। त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तैरिति मे मतिः। सोऽहं ममाहमिति मूढमतीर्विगाढ त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे। तत्त्वं यशा निगदितं भवता यथाः संसाधयामि भगवन् अनुसाधिभृत्यम्। सत्यस्य ते स्वदृशयात्मनयात्मनोऽन्यम् वक्तारमीश विबुधे स्वपि नानुचक्षे। सर्वे विमोहित धियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावः। तस्माद्भवन्तमनवद्यमनन्तपारम् सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठ विकुण्ठधिष्ण्यम् निर्वीणधीरहमः वृजिनाभितप्तो नारायणं नरशखं शरणं प्रपद्ये। ज्ञान विज्ञान संयुक्तः वेद का वेद तात्पर्य निश्चय और उसके अर्थ का अनुभव इन दोनों से सम्यक युक्त और इसी से आत्मानुभव तुष्टात्मा आत्मानुभव से ही संतुष्ट चित्त शरीरिणाम आत्मभूतः शरीरधारियों की आत्मा के समान उनका प्रिय अंतराय ही विघ्नों से विघ्नों द्वारा न विहन्य से विहत नहीं हो पाओगे। ज्ञान का तात्पर्य है वेद के अर्थ का निश्चय और विज्ञान का अर्थ है उसका अनुभव। इस प्रकार से शास्त्र के ज्ञान से संपन्न होना चाहिए और शास्त्र ज्ञान का अनुभव होना चाहिए और समस्त शरीरधारियों के प्रति यही भावना होनी चाहिए कि मैं उनका सुहृद हूँ, सबके हित में लगा रहना चाहिए। किसी के अंश का हक का अतिक्रमण तुम नहीं करोगे तो सबके प्रेम का पात्र बनोगे और इस प्रकार अपने आत्मानुभव से ही संतुष्ट रहकर अपने स्वरूप में रहकर विघ्नों से बृहत नहीं हो पाओगे। कोई विघ्न देगा नहीं और देगा भी तो उससे तुम्हारी साधना नष्ट नहीं होगी। विहान्य से, विहनन का मतलब है अपने साधन मार्ग से च्युत हो जाना। इस प्रकार दोष बुद्धियो भयाति तो निषेधा न निवर्तते, गुण बुद्धिया च विहितं न करोति यथार्थतः। एक ऐसी अवस्था साधक की आती है जब वह निषेध से निवर्तित तो रहता है और विहित का आचरण करता है, परंतु निषेध दोष बुद्धि से नहीं करता है। उभयातीत गुण और दोष बुद्धि से वह अतीत हो जाता है और प्राचीन संस्कार निषेधात निवर्तते, प्राचीन संस्कार बस निंदे कर्मों से वह